मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरी पुस्तक ही छप जाएगी। जब मैंने पुस्तक लिखी तो जो हालात थे उस समय, इस विषय पर पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल था। तो वो मैं देखती हूँ 10 साल में इस देश ने कितनी प्रगति की है। हिंदू समाज के जो बुद्धिजीव थे, जो नेता थे, वो देखिए कितना अलग तरीके से सोच रहे थे और उन भक्तों को दिलासा दिला रहे थे कि आप फिक्र मत करिए, खंडित मूर्ति भी इतनी शक्तिशाली। मस्जिद बनाने के लगभग 300 वर्ष तक हमारे को कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पे मुसलमान थे। जोसेफ टिफिन थैला पहले हैं जो कहते हैं कि एक खुला जो कंपाउंड का खुला हिस्सा है वहाँ पे हिंदुओं ने बेदी बनाई है।
उसके सारे डिजाइन उन्होंने बना के रखे हैं स्केच हाथ से।
बिल्कुल। अब बेदी का मतलब पालना नए बच्चे के लिए। 28 निहंग सिक्स मस्जिद में घुस गए, हवन पूजा उन्होंने शुरू कर दिया और दीवारों पे राम राम लिख दिया। ये दुनिया में एक ही मस्जिद होगी जिसका नाम मस्जिद है जन्म स्थान है। तो वो रिपोर्ट लिखते हैं और वो कहते हैं कि जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम भक्ति कितनी प्रबल है यहाँ। राम लल्ला ही अपना रास्ता ढूंढ रहे थे स्टेप बाय स्टेप और हर मोड़ पर उनको ऐसे मिले लोग। भारत के कुछ इंग्लिश मीडियम मीडिया और कुछ इतिहासकार, उन्होंने जो इस देश के साथ गद्दारी की है, मेरे मन में यही प्रश्न आता है कि इतना आपने इस देश के साथ अन्याय किया है।
नमस्ते मैम, कैसे हैं आप?
नमस्कार, नमस्कार।
मैं अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है तो 10 साल पहले लगभग 2013 में आपने पुस्तक लिखी थी राम मंदिर अयोध्या के ऊपर। तो जब आप लिख रहे थे 2013 में तो क्या आपने सोचा था कि 10 साल के अंदर अंदर हम इस स्थिति में पहुंचेंगे कि जहां पे हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठान के ऊपर बात कर रहे होंगे?
मैंने तो कभी सोचा नहीं था मेरी पुस्तक ही छप जाएगी। जब मैंने पुस्तक लिखी तो जो हालात थे उस समय, इस विषय पर पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल था। और जो पब्लिशर्स जिनके पास मैं गई, उन्होंने कहा कि आपने बहुत अध्ययन किया है और अध्ययन में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम आपकी पुस्तक नहीं छाप सकते क्योंकि आपने कहा है कि वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि जब सारे सबूत मैंने पेश किए हैं और आप मान रहे हैं कि मैंने बहुत अध्ययन किया है तो छापने में क्या आपत्ति है? तो उन्होंने कहा नहीं छाप, अगर आप कहती कि मस्जिद ही रहनी चाहिए तब हमको कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। तो वो मैं देखती हूँ 10 साल में इस देश ने कितनी प्रगति की है। इट इज अमेजिंग। मेरे समय के जो भी लोग थे किसी ने भी नहीं उम्मीद की थी कि मंदिर हमारे जीवन काल में होगा। इट इज अ रिमार्केबल डेवलप। और अब मैं ये देखती हूँ कि जैसे इनॉग्रेशन की तैयारियाँ हो रही हैं तो एक लाइन लगी हुई है पब्लिशर्स की। हर पब्लिशर अयोध्या पे एक किताब निकालना चाह रहा है।
और अभी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वालिटी क्या है, बस टॉपिक चाहिए।
बस उनको सिर्फ बुक चाहिए। कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, छोटी है बड़ी है, कोई मतलब नहीं। दे जस्ट, तो देखिए 10 साल में न केवल मंदिर बन रहा है बट पब्लिशर्स उनका रुख कितना बदल गया। यू नो इट इज रियली रिमार्केबल। तो इसका मतलब ये है कि हमारी सभ्यता उस मार्ग पर अब बहुत तीव्र गति से चल रही है कि अब वो वापस नहीं मुड़ेगी। सो इट्स अ वेरी वेरी रीअश्योरिंग स्टोरी। आप किसी भी पब्लिशिंग हाउस की फोर्थ कमिंग टाइटल्स देखिएगा, दो दो तीन तीन चार चार किताबें अयोध्या पे। कोई 2 महीने में लिख रहा है, कोई 4 महीने में लिख रहा है। यू नो दे जस्ट वांट दैट अयोध्या इज सेलिंग और हमारे पास पुस्तक होनी चाहिए। तो 10 वर्ष में ना केवल मेरी किताब छपी लेकिन कितनी और छप रही है।
तो हम बात करेंगे अयोध्या के ऊपर भी। और मथुरा काशी का एक सवाल आता है कि अयोध्या, एक नारा हुआ करता था कि अयोध्या तो झांकी है काशी मथुरा बाकी है, फिर आया कि नहीं नहीं सिर्फ ये 3 बाकी नहीं है, 30,000 बाकी है।
बिल्कुल।
तो ये सिलसिला पूरा इस पर बात करेंगे, लेकिन एक जनरल बात करते हैं हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो एक जो तथ्य निकल के आता है, जो पिक्चर निकल के आती है वो ये है कि जो भी मंदिर बने या उसके ऊपर जो आक्रमण हुए उनको तोड़ा गया, तो जितनी भी मस्जिदें बनी वो उन्हीं मंदिरों के ऊपर क्यों बनी? क्योंकि ये चाहे राम मंदिर का ले लीजिए चाहे और मंदिरों का, एक ये तो है कि वो सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हम उसको रिकवर कर पाए, और आज जानते हैं कि हमको दिखता है कि भाई मंदिरों के ऊपर बनी हुई है, यही अयोध्या के केस में था, यही काशी में भी है। तो ये क्या फेनोमेना है, इसको थोड़ा समझाइए।
देखिए मध्य काल में अधिकांश मस्जिदें जो बनी वो मंदिरों के ऊपर बनी। अब ये तो है नहीं कि उस समय देश में ज़मीन की कमी थी, कमी तो नहीं थी। मंदिर अगर आपको, मस्जिद आपको बनानी है आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन हम जब ये इस विषय पर बात करते हैं तो हम विचारधारा जो थी, जो काम कर रही थी, उसको हम इग्नोर करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। और इसमें मैं समझती हूँ कि भारत की आज़ादी के बाद एक इतिहासकारों का गुट, उनका ये उद्देश्य था कि विचारधारा, जो विचारधारा इस सभ्यता संस्कृति के विरुद्ध थी, उस विचारधारा को इग्नोर करें, उसके उसको नज़रअंदाज करें। लेकिन ये विचारधारा अभी भी हम नहीं कह सकते कि थमी है, क्योंकि अभी भी जैसे बामियान बुद्धास अफगानिस्तान में तोड़े गए, पाकिस्तान में हमको कितने किस्से सुनने को आते हैं, बांग्लादेश में भी, तो ये विचारधारा है। और जब हम भारत के इतिहास को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उत्तरी भारत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, दक्षिण के बारे में बाद में बात कर सकते हैं। उत्तरी भारत में 18वीं शताब्दी से पहले शायद कोई भी मंदिर नहीं बचा। तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा प्रहार था उस विचारधारा का भारत की संस्कृति और सभ्यता पर, लेकिन कोई भी मंदिर नहीं था जिस पर आक्रमण किया हो, जिसके स्थान पर मस्जिद बनाई हो, जहां से भक्त पीछे हट गए। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं उत्तरी भारत में, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि भारत, उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में सत्ता, जिनको हम हिंदू वर्ग कह सकते हैं, उनके हाथ में नहीं थी, और लोग इतने अमीर भी नहीं थे कि वो विशाल मंदिर बना सकें दोबारा। तो हर जगह हम देखते हैं कि मंदिर पर आक्रमण हुआ, उस स्थान के ऊपर मस्जिद बनी। लेकिन जो भक्त थे, भक्त कौन थे? साधारण लोग। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पूज्य देवता के नाम पर मंदिर नहीं हो। तो बहुत केसेस हैं जब उन्होंने खंडित मंदिरों के शेष को उठाकर एक छोटी सी मंदिर बनाया। तो ये जो इतिहास है ये सारी जगह है। सोमनाथ प्रसिद्ध है, हम सबने सोमनाथ का नाम सुना है। सोमनाथ पर कम से कम 6 बार आक्रमण हुए, और ये मंदिरों पे जो आक्रमण हुए वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि जो प्रहार कर रहे थे वो इसको एक गर्व का कार्य मानते थे, और उन्होंने, उनके इतिहासकारों ने हर अटैक को, हर प्रहार को रिकॉर्ड किया। सो दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि शायद हम में से इतने लोग नहीं जानते कि जो भक्त थे जिनके मंदिरों पर प्रहार हुआ, उन्होंने भी अपने संघर्ष को रिकॉर्ड किया। तो ये जब हम मध्यकाल के इतिहास को पढ़ते हैं तो बेसिकली हम फारसी इतिहासकारों पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोगों ने इतिहास लिखा उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। महमूद गजनवी का जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, एक जैन मंत्री थे, वो गवाह थे, उन्होंने देखा महमूद गजनवी का प्रहार और उन्होंने लिखा, और उन्होंने ये भी लिखा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद एक और जैन मंदिर पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो मूर्ति को हिलाने में असफल रहे, और वो पूरा विवरण करते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है जो मध्यकाल में लिखा गया था, वो लिखा गया था जिन प्रभा सूरी। अब जिन प्रभा सूरी ने 14वीं शताब्दी में अपना ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ में क्या क्या विशेषता है, उत्तरी भारत में जो जो स्थानों पर आक्रमण हुआ था वो हर स्थान पर गए और उन्होंने भक्तों को कहा तुम निराश मत हो, खंडित मूर्तियां भी इतनी शक्तिशाली हैं जैसे वो पहले थी, और इन पर भरोसा करो और इन पर इनकी पूजा करते रहो जैसे पहले की थी। मतलब खंडित मूर्ति, हम आज सोचते हैं कि खंडित मूर्ति की हमको नहीं पूजा करनी, तो मध्यकाल में ये जो हिंदू समाज के जो बुद्धिजीव थे, जो नेता थे, वो देखिए कितना अलग तरीके से सोच रहे थे, और उन भक्तों को दिलासा दिला रहे थे कि आप फिक्र मत करिए, खंडित मूर्ति भी इतनी शक्तिशाली है। और क्योंकि इतना प्रहार हो रहा था मध्यकाल में, तो एक ग्रंथ लिखा गया मध्यकाल में कि अगर मंदिर टूट गया, मूर्ति भी नहीं है, तब क्या करना है। तो वो ग्रंथ लिखता है, या अगर खतरा है तो वो लिखता है कि आप मूर्ति को बड़ी इज्जत से पूजा करके उसको जमीन पे दफना दीजिए, और आप सोचिए कि मूर्ति वही है और आप पूजा करिए अगर मूर्ति नहीं भी है। सो यू नो दीज काइंड ऑफ इंस्टेंसेस आर सो सो इंटरेस्टिंग। और सिंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अयोध्या, मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पर मंदिर टूट के मस्जिद बनी, लेकिन भक्तों ने मस्जिद के जितने करीब जा सकते थे उन्होंने मंदिर दोबारा नहीं बनाया। सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली रिमार्केबल।
अयोध्या की बात करें तो जो वेदी बनाई थी जहाँ पे पूजा करते थे वो तो मस्जिद के परिसर में ही थी।
अब मैं आपको अयोध्या का परिसर का समझा देती हूँ। जब हम घर बनाते हैं तो हम एक प्लॉट खरीदते हैं, प्लॉट के चारों तरफ हम बाउंड्री वॉल बनाते हैं, और बाउंड्री वॉल के अंदर हमारा प्लॉट है। तो ऐसा ही बाबरी मस्जिद के केस में हुआ कि बाउंड्री वॉल, उसमें एक मंदिर था, ठीक है, वो मंदिर बाबर ने 1528 में तोड़ा और वहाँ पे मस्जिद बना दी। तो इसका मतलब है कि जो मंदिर का स्थान था वो खो गया। तो वहाँ पर क्योंकि हिंदुओं ने या जैन्स ने या सिखों ने कोई मंदिर मस्जिद तोड़ के दोबारा नहीं बनाया। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है तो उन्होंने मस्जिद नहीं तोड़ी, उसके आसपास बनाया। अयोध्या की मैं उस तरह से बात नहीं करी क्योंकि 1992 में तो मस्जिद टूटी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स, अदर प्लेस। तो ये परिसर में मस्जिद थी, तो इसका मतलब है मस्जिद को नहीं तोड़ सकते थे, तो परिसर में खाली जगह बची। तो आप हैरान हो जाएंगे, मैं तो बिल्कुल हैरान थी कि मस्जिद बनने के बहुत शीघ्र बाद हमको खबरें मिलती हैं कि भक्त जो खुला एरिया है वहां पर घुस गए हैं। और वहाँ पे घुसकर वो उस खुले इलाके में, खुद खुले एरिया में जो बना सकते हैं वो बना रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बनाया जन्म स्थान, उसके बाद उन्होंने बनाया तीन चार और छोटे छोटे बिल्डिंग्स। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है ये हमारे पास 1858 के बाद ब्रिटिश फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेस फाइल किए थे उसमें रिकॉर्डेड है। तो इसका मतलब ये है, अब जब ये सुप्रीम कोर्ट या अलाहाबाद हाई कोर्ट में केस गया तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा हमको बताइए कि जन्म स्थान छप्पर ये जो सारे कंपाउंड में इमारतें हैं बिल्डिंग्स हैं ये कब बनी। ये तो है नहीं कि बाबर ने मंदिर को तोड़ दिया, मस्जिद बनाई और इन सब स्ट्रक्चर्स को छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रक्चर्स मस्जिद बनने के बाद, तो ये ही सबूत है कि भाई हिंदूज खोए हुए स्थान के जितना करीब बना सकते थे उन्होंने बनाया। अब अयोध्या के बारे में सबसे पहले ये बात है, तो उन्होंने जन्म स्थान क्या था, एक चबूतरा था, उसको राम चबूतरा बोलते थे। तो वहां राम चबूतरा कहाँ बनाया, जहां से वो मस्जिद की के दर्शन कर सके।
अच्छा,
सो यू नो इट इज अ वेरी वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। अब ये हमको ये जानना जरूरी है कि हिंदू प्रेजेंस हमको दिख रही है कि जन्म स्थान उन्हें बनाया है, सीता की रसोई है, छप्पर है और कोठड़ी है वो जो बना रहे हैं वहां पे और मूर्तियां लगाने की। लेकिन 1858 मतलब बाबर के मस्जिद बनाने के लगभग 300 वर्ष तक हमारे को कोई सबूत नहीं है कि वहां पे मुसलमान थे। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद पार्टी को कहा कि मस्जिद बनी ये तो दिखता है सबको, लेकिन 300 वर्ष उस मस्जिद का क्या प्रयोग हुआ आप हमको बता दीजिए।
कोई नमाज पढ़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं,
कोई नहीं था। तो अथवा फिर बाबर ने यहाँ पे मस्जिद क्यों बनाई, ये बहुत जरूरी बात है हमको समझने की। अगर 300 वर्ष वहां पे कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा था तो वहां पे बाबर मस्जिद अगर उनको बनानी थी तो अयोध्या में और स्थानों पे भी बना सकते थे। लेकिन वो बहुत क्लियर थे कि उनको ये जगह चाहिए, इस जगह का महत्व है। अब बाबर ने हिंदुस्तान से आने से पहले समरकंद इत्यादि में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने मस्जिदें बनाई। भारत में तीन मस्जिद हैं, और भी बनाई होंगी लेकिन तीन मस्जिद हैं जिन पर हमको शिलालेख मिले हैं। तो वो उसमें तो कोई शंका की बात नहीं है कि ये तीन बाबर ने बनाए। और तीन कहाँ बनाए, एक तो पानीपत पे बनाया, वो अभी भी है पानीपत, क्योंकि उन्होंने लोधी वंश को वहां पे हराया था और लोधी वंश की गद्दी उनको यहां से मिली थी। सेकंड उन्होंने बनाया संभल में, वो भी मस्जिद अभी भी है
और वो भी विष्णु मंदिर,
और वो मस्जिद हिंदू मंदिर को तोड़ के बनाई गई। और आप मस्जिद अगर जाएं तो वहां पे इंस्क्रिप्शन है कि मीर हिंदू बेग ने बाबर के फरमान पे ये बनाई है, और मंदिर के शेष आपको वहां पे मस्जिद में मिलेंगे। ठीक है, और संभल की क्या महत्वता थी, क्योंकि हिंदू मान्यता थी कि कल्कि अवतार का संभल में प्रकट होंगे। तो इमेजिन करिए क्या क्या जगह चुनी। और तीसरा था अयोध्या। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदूज ने तो उस जगह को नहीं छोड़ा, मस्जिद नहीं तोड़ी। ठीक है, जगह को नहीं छोड़ा तो कंपाउंड में वो बनाते गए। 1858 से पहले जो अलाहाबाद हाई कोर्ट में सबूत हैं वो साबित करते हैं कि 1858 से पहले हिंदूज मस्जिद के अंदर, मस्जिद के अंदर और मस्जिद के बाहर जो खुला स्थान था दोनों जगह वो इस्तेमाल करते थे। 1858 से पहले पूरा कॉम्प्लेक्स उनके कंट्रोल में था। अब सबूत की बात करते हैं, हमारे पास इसके अतिरिक्त क्या सबूत थे? इतने ज़्यादा सबूत थे, एक तो विलियम फिंच थे, इंग्लिश मैन थे, 1608 में वो अयोध्या आए। तो ये जो लोग आए,
ट्रेवलर्स का अकाउंट था और एक जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे उनके भी अकाउंट, दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे।
अच्छा, एक तो ये, अब इनको क्या पता था कि भी 300 साल बाद हमने जो लिखा है वो
काम आएगा,
इतना काम आएगा, तो वो लिखते हैं कि भाई यहाँ पे आते हैं। दूसरा था जेजुएट जोसेफ टिफिन थैला। जोसेफ टिफिन थैला 40 साल भारत रहे
और उनके स्केचेस कितने जबरदस्त हैं
और 7 साल वो अवध के इलाके में रहे। और जोसेफ टिफिन थैला पहले हैं जो कहते हैं कि एक खुला जो कंपाउंड का खुला हिस्सा है वहां पे हिंदुओं ने बेदी बनाई है।
उसके सारे डिजाइन उन्होंने बना के रखे हैं स्केच हाथ से।
बिल्कुल। अब बेदी का मतलब पालना नए बच्चे के लिए। और वो ये लिखते हैं कि रामनवमी में इतने लोग आते हैं यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए। तो वो ये लिखते हैं। और इम्पोर्टेंट एक है, 1850 या 1880 में अंग्रेज सरकार ने अमीन कमीशन की स्थापना की थी और अमीन कमीशन को कहा कि इस परिसर में, बाबरी मस्जिद परिसर में जो जो बिल्डिंग्स हैं, जो जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी आप रिपोर्ट हमको दीजिए, क्योंकि मस्जिद के अलावा इतनी ओपन ग्राउंड में इतनी छोटी छोटी बना दी थी महंत्स ने। तो वो अमीन कमीशन वो बताता है। और मुझे सबसे हैरानगी की बात ये लगी, वो कहता है कि कंपाउंड दीवार के बाहर खाई परिक्रमा चार तरफ, मतलब कि बाउंड्री वॉल के आगे जमीन धस गई है क्योंकि इतने लोग वहां पे परिक्रमा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भक्त आते थे उनके लिए पूरा परिसर पवित्र था। और जब हमको याद रखना चाहिए कि वहां पे कोई हिंदू राजा नहीं था, ये साधारण लोग थे, अपने बलबूते पे आ रहे थे, कितना कष्ट करके आ रहे थे, लेकिन राम को वो छोड़ने को तैयार नहीं थे।
ये है सिविलाइजेशनल मेमोरी।
जब हम बोलते हैं कि भाई हिंदूज की कोई मेमोरी नहीं है, हम नहीं बोलते, हमको तो पता है कितनी मेमोरी थी। जो हमारे क्रिटिक्स हैं, आलोचक हैं, वो कहते हैं कि भाई इनको तो इतिहास की कोई सेंस ही नहीं थी, अंग्रेजों ने भी ये कहा और उसके बाद जो मार्क्सवादी उनके उत्तराधिकारी इतिहासकार आए उन्होंने भी ये कहा कि भाई, लेकिन ये सबूत है कि कौन बोल रहा था इन लोगों को कि ये यहाँ पे जन्म स्थान था, वो तो उस स्थान को राम से इतना उनका संबंध था कि वो वहां पे परिक्रमा, मतलब जमीन ढस गई है परिक्रमा, तो कितने लाखों लोगों ने परिक्रमा की। एक और दिलचस्प बात है, ओरछा के राजा वो कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी वो राम भक्त थी। तो उनके राजा ने कहा होगा कि भाई तुम्हारे राम भगवान तो प्रकट ही नहीं होते। तो उसने कहा मैं अयोध्या जाऊंगी राम जी के दर्शन के लिए, आप ओरछा से अयोध्या जाना उस वातावरण में कोई आसान बात नहीं थी। तो लेकिन वो गई और वहां पे वो रही, लेकिन उनको रामलला के दर्शन नहीं हुए। तो उन्होंने कहा मैं सरयू नदी में समाधि ले लूंगी। तो वो सरयू नदी प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि मैं यहाँ पे अपना जीवन त्याग दूंगी। जैसे वो सरयू में प्रवेश करती हैं, उनका पाँव किसी चीज से, कोई चीज दिखती है, मतलब फील होता है उनको, और वो चीखती हैं। तो उनके साथ जो साथी आए थे वो एकदम कूदते हैं सरयू में कि भी क्या है यहाँ पे, और वहाँ पर उनको राजा राम की एक मूर्ति मिलती है। और वो ओरछा की रानी राजा राम की मूर्ति ओरछा वापस ले जाती हैं अपने साथ, और ओरछा में आज भी आपको वो मूर्ति मिलेगी और मंदिर में स्थापित है। तो मतलब कि कितनी विचित्र कहानियां हैं। हमको एक्चुअली अपने इतिहास से हम अज्ञात थे, और जो हम वेस्टर्न एजुकेटेड थे, हमको अपने इतिहास ने हमको अपने आप से नफरत करना सिखाया था। अब क्या है कि नेशनलिज्म ने इतनी, राष्ट्रवाद की भावना ने इतना जोर पकड़ा है कि जैसे पहले नारा सुनते थे हम, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन पहले हम नारा ही सुनते थे, अब हम देखते हैं कि लोगों में जो जान आ गई है, कॉन्फिडेंस आ गया है, और गर्व है अपने इतिहास का। अब मैं अखबार में पढ़ रही थी, पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी
ऑफिशियल हैंडओवर हो गया।
हाँ, क्योंकि ग्रेट रिवोल्ट 1857 के विद्रोह के बाद वो 1858 में अवध इलाके की एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास आती है। तो 1858 में हमारे को पहली बार सबूत मिलता है कि मुस्लिम प्रेजेंस एट बाबरी मस्जिद। अब वो कब आए, हो सकता है कि 1858 के कुछ वर्ष पहले ही आए होंगे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है कि हम वहाँ पे थे। उनका सबूत 1858 से आरंभ होता है, और हमारा मतलब मंदिर पार्टी का सबूत विलियम फिंच, जोसेफ टिफिन थैला, 1828 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ऑफिसर थे हफीजुल्ला, उन्होंने बयान दिया कि बाबरी मस्जिद इज बिल्ट ऑन द साइट ऑफ द राम टेम्पल एंड इट इज नेक्स्ट टू सीता की रसोई। तो ये 1822 में उनका बयान था। तो ये थ्री इम्पॉर्टेंट एविडेंस दैट वी हैव। लेकिन जो मैं बात बताना चाह रही थी कि 1858 में जो थानेदार थे अवध के, वो कंप्लेंट FIR फाइल करते हैं कि भाई 28 निहंग सिक्स मस्जिद में घुस गए, हवन पूजा उन्होंने शुरू कर दिया और दीवारों पे राम राम लिख दिया। कौन से स्थान की मैं घटना, ये कहाँ हुई है घटना, मस्जिद है जन्म स्थान, ये थानेदार लिखते हैं। ठीक है,
नाम ही मस्जिद है जन्म स्थान है।
और अगले दिन जो मुतवली बाबरी मस्जिद के थे वो ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करते हैं कि ये हुआ, और वो क्योंकि साइन करना पड़ता है जब आप कंप्लेंट, तो वो कहते हैं मैं मुतवली मस्जिद है जन्म स्थान। ये दुनिया में एक ही मस्जिद होगी जिसका नाम मस्जिद है जन्म स्थान है। इट वॉज एवरीवन न्यू, ये कोई सीक्रेट बात नहीं थी, उनको सबको पता था ये जन्म स्थान है। लेकिन मेरे को इस विषय में व्हाट आई वांट टू से इज कमिंग टू द प्रेजेंट। कुछ दिन पहले मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी अखबार में कि जो निहंग सिक्स 25 1858 में मस्जिद में घुस गए थे, उनके परिवार के लोग अब राम मंदिर की स्थापना की खुशी में वहां पे लंगर ऑफर करेंगे। आप इमेजिन करिए, उनके पूर्वज 1858 में वहां पे गए और उनके डिसेंडेंट्स 2024 में उनको ये याद है कि हमारे पूर्वजों ने ये काम किया था, और वो कहते हैं इस खुशी में हम जनवरी में वहां पे लंगर करेंगे। दीज आर सच फैसिनेटिंग स्टोरीज। मैंने आपको बताया कि फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1858 से कंप्लेंट फाइल हो गई, पहले FIR हुआ फिर मुतवल्ली ने फाइल किया। 1858 से 1947 आज़ादी तक फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों पार्टीज के बहुत सारे केसेस हैं जो एक दूसरे के खिलाफ फाइल किए, लेकिन हैरानगी की बात है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स सारे बच गए, ना कोई आंधी ना तूफान ना बारिश ना दीमक, दे ऑल आर प्रिजर्व्ड। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी जो अलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश की गई पहली बार। तो इसमें मतलब दे आर सो मैनी, इतने लंबे केसेस हैं, लेकिन आई विल दो तीन इम्पॉर्टेंट केसेस हैं। एक तो जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, एक तो वहाँ पे जो ऑफिसर थे वो कहते हैं कि रामनवमी के टाइम पे लोगों की इतनी भीड़ हो जाती है कि हमको एक और रास्ता खोलना पड़ता है कि ताकि आधे जो यात्री हैं वो दूसरे रास्ते से आएं, क्योंकि इतनी भीड़ हो जाती है हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आप इमेजिन करिए कैसे ये लोग थे, इनको कोई इनाम नहीं मिल रहा था, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन अपनी भावना राम के प्रति श्रद्धा, तो वो अंग्रेज ऑफिसर लिख रहा है कि हमको रामनवमी के टाइम पे और दरवाजे खोलने पड़ते हैं, ऑल एंट्री पॉइंट्स, एक्स्ट्रा एंट्री पॉइंट्स, क्योंकि इतना रश होता है यात्रियों का। दिस इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। और एक और केस जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो है कि जो मुतवल्ली बाबरी मस्जिद के, वो एक केस फाइल करते हैं फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो क्या कहते हैं कि कार्तिक मेला और रामनवमी में हमारा महंस के साथ एक समझौता था कि हम उनको और जो जो लोग वहाँ पे दुकानें इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। क्या दुकानें, फूल की, प्रसाद की, जैसे मंदिरों के बाद आप देखते हैं ना। तो वो कहते हैं कि हमारा ये था कि जो बिक्री होती है उसका आधा हिस्सा हमको देंगे और आधा महंत रखेंगे। इमेजिन, मतलब उस टाइम तो नमाज नहीं हो रही होगी ना कार्तिक मेला और रामनवमी के टाइम, तो वो कह रहे हैं कि हमने पूरा परिसर खाली कर दिया और ये,
और इतनी भीड़ आ रही है, इतने लोग आ रहे हैं कि उनको, सरकार को भी लग रहा है कि इससे भी कुछ फायदा उठाया जा सकता है, रेवेन्यू आ सकता है,
और फिर वो एक नया रास्ता भी खोलते हैं, यू नो। तो वो कहते हैं कि इस बार ना ये महंत ने अपने आप, ये जो 50-50 था वो उन्होंने हमारा हिस्सा कम कर दिया। तो वो कोर्ट को बोल रहे हैं कि भाई हमारा हिस्सा जो 50 था वो हमको दीजिए 50%। तो कोर्ट बोलती है जब तुमने वहाँ पे अलाउ कर दिया दुकानों का, इसका मतलब है जो परिसर है उसका सारा तुम मालिक नहीं हो, तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। सो यू नो दैट इज दैट। और दूसरी बात, यू नो, जब हम अपने पूर्वजों की, मतलब कि जो उन्होंने परिश्रम किया और जो इस सभ्यता को बचाए रखा, उसमें मतलब हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जो महंत थे, मैंने आपको बताया उन्होंने चबूतरा बनाया था, वो चबूतरा 11 फुट बाय 17 फुट था और वो ओपन टू द स्काई, तो बारिश में, धूप में, सर्दी में वो वहां पे बैठे रहते थे, कोई छत नहीं थी। आप इमेजिन करिए कि, लेकिन उनको था जगह नहीं छोड़नी हमको। यही हम देखते हैं हर जगह कि जगह नहीं छोड़नी। मस्जिद के अंदर तो जाते ही थे 1858 तक, लेकिन वो चबूतरा नहीं छोड़ना, क्योंकि वो भी परिसर के अंदर ही है ना। तो वो अंग्रेजों को कहते हैं, ब्रिटिश जजेस को, कि हम यहाँ पे, हमको बहुत कठिनाई है, बारिश में हम भीग जाते हैं, कड़ी धूप में हमारे को इतना कष्ट होता है, और सर्दी में आप इमेजिन नहीं कर सकते हमारे को कितना प्रॉब्लम होती है। तो हम ये चाहते हैं कि ये 11 फुट बाय 17 फुट जो राम चबूतरा हमारा है, हमारे पास है, इसके ऊपर हमारे को परमिशन दीजिए, इजाज़त दीजिए कि हम यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना दें। तो ब्रिटिश जजेस, वो तो मैं मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश न्यायाधीश जो थे, जजेस जो थे, वो बहुत फेयर थे। उन्होंने सारे पेपर्स को स्टडी किया,
सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उससे पहले के सारे, उनके बेसिस पे उन्होंने बिल्कुल डिसीजन लिया।
इतना इम्पार्शियल थे, इतने फेयर थे। ब्रिटिश रूल के और समस्याएं थी, लेकिन मैं जो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया है, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्होंने हिंदू के साथ नाइंसाफी की। तो ब्रिटिश जजेस बोलते हैं कि भाई हम समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, और हमको ये भी पता है कि पूरा राम चबूतरा आपका है, लेकिन यहाँ पर इतना विवादित स्थान है ये कि हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं कर सकते। तो बट इमेजिन करिए, सदियों से वो लोग वहां पे खड़े बैठे हुए थे, महंत 1912 में और 1934 में अयोध्या में दंगे हुए। दंगों का कारण क्या था? गौ हत्या हुई थी। तो 1912 में जब पहली बार ये हुआ, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के जो गवर्नर थे, वो खुद आए अयोध्या कि भाई कोई रास्ता निकाल सकें। तो वो रिपोर्ट लिखते हैं और वो कहते हैं कि जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे, तब तक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम भक्ति कितनी प्रबल है यहाँ पे। यू कैन नॉट इमेजिन द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड राम अंटिल यू कम हियर। फिर 1934 में दोबारा गौ हत्या होती है, और उस टाइम देर इज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय बाबरी मस्जिद, ठीक है। और बाबरी मस्जिद का एक गुंबद तो गिरा देते हैं और दूसरे गुंबद पर भी प्रहार करते हैं, तब तक पुलिस पहुंच जाती है। तो इस केस में वो हिंदू कम्युनिटी, क्योंकि हिंदूज ने ही तोड़ा है मस्जिद, तो हिंदू कम्युनिटी पे जुर्माना लगाते हैं कि आपको 84,000 रुपीस जुर्माना आपको पे करना पड़ेगा।
उस समय 84,000
रुपीस कितना बिग अमाउंट, इतनी बड़ी रकम। और पिछले हफ्ते मैंने स्वराज्य मैगजीन में एक लेख पढ़ा, और जो अयोध्या के जो लोग थे जिनको 84,000 रुपीस मिल के सरकार को देना था ताकि वो मस्जिद को रिपेयर कर दें, तो उनके परिवार के लोग, उनको कुछ लोगों को इंटरव्यू किया, और उनको याद था कि हमारे परिवारों ने 84,000 रुपीस मिल के दिया और हम किस तरह से बर्बाद हो गए। इमेजिन करिए कि वो जो डिसेंडेंट्स हैं उन परिवारों के, अयोध्या के, जिन्होंने 84,000 रुपीस पेनल्टी दी,
सब कुछ बेच के
84,000 रुपीस वाज अ प्रिंसली अमाउंट। तो ये जो उनके परिवार हैं, इनके कुछ लोगों को इन्होंने इंटरव्यू किया, इनको याद था कि हमारे परिवारों ने इतनी बड़ी रकम दी, और उन्होंने कहा कि हम तो बर्बाद हो गए थे, अब तक हम नहीं गरीबी को दूर कर सके बिकॉज ऑफ द ह्यूज पेनल्टी। तो जब हम इतिहास पढ़ते हैं, तो हमको वी हैव टू रिमेम्बर द होमेज। ये बड़े बड़े
ये तो कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं कि 500 साल की आहुति
बिल्कुल
का नतीजा है जो आज है।
लेकिन हमको याद करना चाहिए ना, जिन्होंने ये किया उनको तो क्या मिला? उतना संघर्ष, उतनी कठिनाइयां, उतनी मुसीबतें। अब हम कहते हैं कि हिंदू संस्कृति, अरे हिंदू संस्कृति आपने और मैंने और किसी राजा ने नहीं, इन लोगों ने बचाई है। और कितने सैकड़ों ये लोग थे,
और कोई कोना नहीं होगा देश का जहां से, जो आप रामनवमी की भी बात कर रहे हैं, और मैं 2017-18 में वहां पे गया था, तो कम से कम 10,000 तो उस समय आते थे डेली। और कोई ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां से, अगर आप पूछना शुरू करें तो पूरे भारत में और भारत के बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से लोग नहीं आते थे। तो जो आजकल नॉर्थ साउथ और ये सब बकवास कर रहे हैं लोग, तो आप देखिए वहां भी कितने साउथ से लोग आते हैं।
बिल्कुल।
तो ये तो एक मतलब किसी की बपोती नहीं है, बल्कि हर एक हिंदू परिवार का कोई ना कोई वहां पे इन 500 साल में कोई योगदान जरूर रहा होगा।
बिल्कुल। और ये हम इस वक्त जब राम मंदिर, विशाल भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, बन गया है, तब हमको एक मिनट तो एटलीस्ट इन लोगों की याद।
बिल्कुल। बल्कि ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है 500 साल का पूरा, पीसफुल एज वेल एज वायलेंट, दोनों को पढ़ाना चाहिए स्कूलों में।
बिल्कुल।
और एक प्रॉपर कोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई मेरे ख्याल से तो पूरे दुनिया में कोई मूवमेंट नहीं है जो इतना इतना शानदार तरीके से, जो इतने लंबे तरीके से पीसफुल रहा और फिर जब ज़रूरत पड़ी तो वायलेंट भी रहा। तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक भी है, जो श्री राम जो रास्ता मांगते हैं समुद्र से, और जब नहीं है समुद्र रास्ता देते तो फिर तीर भी चलाने की वो होती है।
अब ये स्कूलों में पढ़ाया जाएगा ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन जैसे मैंने अपनी पुस्तक कभी नहीं सोचा था तो
तो हो सकता है कि 10 साल में
हो सकता है 10
पीएचडी
हो,
पीएचडी तो होना ही चाहिए। हाँ,
बिल्कुल, बिल्कुल 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 यू नो। और 1934 के करीब उसके बाद डेली नमाज तो खत्म हो गई थी। तो वहां पे हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जो वक्फ कमिश्नर ने सपोर्ट पेश की थी। तो वो कहते हैं कि मस्जिद बंद रहती है, लॉक्ड रहती है, और फ्राइडे को, शुक्रवार को जुमा नमाज के लिए वो 2 घंटे पहले खुलती है, और उसके बाद सफाई होके उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर बंद करते हैं। और वो कहते हैं कि नमाज 2 घंटे मतलब कि इतना ही मुश्किल है, क्योंकि जो कंपाउंड है, परिसर के अंदर जो खुली जगह है, वहाँ पे जो लोग हैं वो इतने हॉस्टाइल हैं, इतने विरोध करते हैं हमारा वहाँ पे, कि हम बस मुश्किल से वहाँ से निकल पाते हैं। तो इसका मतलब है 1930। अब देखिए
ये 100 साल में भी, मतलब देखिए 1858 के आसपास इनका शुरू होता है दखलंदाजी,
ठीक है,
और 1930 तक आ चुके हैं हम।
हाँ, तो कितना कितने वर्ष,
80 साल लगभग, 60
और
साल।
उसके बाद तो कोई, वो तो खुद उनकी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है ना, दैट दे ओनली गो वंस अ वीक, और उसमें भी उनको कितनी मुश्किल होती। तो 1934 के बाद तो नमाज खत्म हो गई। अच्छा, और जब 1949 में रामलला प्रकट हुए, ठीक है, तब किसी मुसलमान ने, मुस्लिम ने कोर्ट में जाके नहीं कहा कि मेरी नमाज पढ़ने का जो हक है वो डिनाय हो गया, किसी ने परवाही नहीं की। नो FIR वॉज फाइल्ड फॉर क्लेमिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ राइट टू ऑफर नमाज, किसी ने नहीं की। प्रॉब्लम किसको हुई, दिल्ली में केंद्र सरकार को। तो दिल्ली में केंद्र सरकार तो हैरान हो गई कि ये क्या हो गया, रामलला प्रकट हो गए। तो
उन्होंने ऑर्डर भी दिया था कि इसको हटाया जाए, तो नायर साहब ने लिखा था कि यहाँ पे पूरे देश, मतलब यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है कोई कि जिसके हिम्मत हो कि निकाल सके।
नहीं, बट कैन यू इमेजिन, अब उस समय का देखिए और आज का देखिए, कि प्रधानमंत्री स्वयं उद्घाटन करेंगे।
और ऐसा नहीं है वहां पे माहौल नहीं था, सोमनाथ में बकायदा गए थे
वो प्रधानमंत्री, तो
प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन गृह मंत्री गए थे।
हाँ, तो गृह मंत्री तो अगर उस टाइम के, तो वो तो कहीं भी जाने को तैयार थे। तो आप इमेजिन करिए, वो चिट्ठी लिखते हैं कि भी ये तो बहुत गलत हुआ है, और पाकिस्तान और कश्मीर के मैं कैसे उनके साथ बात करूंगा, ये तो बहुत गलत बात हुई। और फिर वो कहते हैं के नैयर साहब को, कि कमिश्नर बोलते हैं, के नैयर रोज डेप्यूटी कमिश्नर। एक तो ये चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को लिखते हैं, जो चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, वो वो जो उनकी चिट्ठियां हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री ने तो ये चिट्ठियां लिखी नहीं, उनके कलेक्टेड वर्क्स में वो हैं। ठीक है, अब जो कमिश्नर हैं उनको फटकार हुई होगी ना, तो वो डिप्यूटी कमिश्नर के नायर साहब को बोलते हैं कि रात को चुपचाप रामलला को यहां से हटा। तो के नायर इज अनदर हीरोइक सन ऑफ दिस लैंड, वीर पुत्र हैं इस जन्म के। तो उन्होंने कहा सवाल ही नहीं उठता, मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि हटा दो, इसका मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि लोगों की क्या श्रद्धा है इस स्थान पर। और मैं तो किसी मंत्री किसी पुजारी को नहीं ढूंढ पाऊंगा जो ये कर देगा।
वो एक्चुअली जो जिस तरीके से उन्होंने वो लिखा है ना, वो डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस है।
ब्रिलियंट
कैसे मना करते हैं विदाउट सेइंग कि मतलब मैं तो चाहता हूं और उस तरीके
मैं,
से
मैं तो हुई नहीं।
हाँ, मैं तो हुई नहीं।
हाँ, मतलब। और फिर वो ये कहते हैं कि मैं एक सुझाव देता हूं, रामलला प्रकट हो गए तो उनकी पूजा में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, तो हर रोज पुजारी आएंगे और नियम अनुसार पूजा करेंगे। लेकिन जब तक ये कोर्ट फैसला नहीं करती, हिंदूज और मुस्लिम्स को उस साइट पर नहीं आने देंगे। तो मतलब कि रामलला ही अपना रास्ता ढूंढ रहे थे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, और हर मोड़ पर उनको ऐसे मिले लोग। यू नो इट इज रियली रिमार्केबल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 500 साल में ये पहली बार है जब हिंदुओं को अपना पवित्र स्थान वापस मिला है। दिस इज समथिंग दैट इज रियली 500 साल। और इमेजिन करिए, कोई इमेजिन कर
सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं मिला है, पूरे विश्व में।
हाँ,
मतलब हिंदुओं को तो पहला है।
हाँ,
लेकिन पूरे विश्व में कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं है सिवाय इस इंस्टेंस के जहां पे किसी को भी मिला हो।
बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगी, आप पेगन सिविलाइजेशंस की बात कर रहे हैं,
वो तो
बिल्कुल ठीक है, वो तो खत्म ही हो गई। कहाँ है पेगन सिविलाइजेशन जो ओरिजिनल सिविलाइजेशंस है? और हमारी संस्कृति अब राखी गढ़ी में बताया गया कि 8000 साल पहले की है। तो आप इमेजिन करिए कंटिन्यूस, ठीक है। लेकिन स्पेन में जो एस्टेब्लिश्ड सोसाइटी थी, तो जब अरब आर्मीज उन्होंने प्रवेश किया तो कोई भी कैथीड्रल या चर्च नहीं थी जिसको उन्होंने मस्जिद नहीं बनाया। लेकिन जब स्पेन के लोगों ने अरब आर्मीज को हटाया, निकाला, तो कोई मस्जिद नहीं थी जिसको उन्होंने वापस कैथीड्रल नहीं बनाया। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पेगन, अब पेगन शब्द सही शब्द है या नहीं है, लेकिन भारत के अलावा सब जगह वो उनका कोई नाम निशान नहीं। और हम वी हैव रियली बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग, अब राष्ट्रवाद की भावना इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स, यू नो। सो इट इज अ मेजर जर्नी दैट द हिंदू और इंडियन संस्कृति सभ्यता ने तैयार किए।
इसमें मैं दो और एस्पेक्ट पे बात करना चाहूँगा। एक तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, आज हम देख पा रहे हैं कि काशी में जो हो रहा है वो अभी चल ही रहा है, अभी कोर्ट में आना है उसका। लेकिन ऐसा ही सर्वे 2003 में मार्च में शुरू हुआ था और वो भी बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट था जिसके थ्रू मतलब ऐसी फाइंडिंग्स निकली
अयोध्या में।
हाँ जी, बीआर मनी जी के अंडर में जो हुआ था
जी,
तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल फाइंडिंग्स थी जिसकी वजह से कोर्ट को भी ये हुआ कि अब तो इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। तो एक वो एस्पेक्ट पे मैं आप थोड़ा बात करें, उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है जो लोगों को जानना चाहिए।
ठीक है, अब पहले बात मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत के कुछ इंग्लिश मीडिया, इंग्लिश मीडियम मीडिया और कुछ इतिहासकार, उन्होंने जो इस देश के साथ गद्दारी की है उसको हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो मंदिर पार्टी के पास सबूत था वो सारा सबूत 1947 पे था, ऑलरेडी था। तो जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी और जो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी वो 1947 में भी दे सकते थे, क्योंकि सारा सबूत ब्रिटिश जजमेंट्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, ये सब पहले से ही थे। सिर्फ जो ऐड हुआ है वो है एएसआई रिपोर्ट। अब ये एएसआई रिपोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट को पता था कि इस पर बहुत विवाद हो सकता है, तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि किसी भी दिन खुदाई नहीं होगी अगर दोनों पक्ष के लोग वहां पे उपस्थित नहीं है, मस्जिद पार्टी और मंदिर पार्टी, और हर रोज जो खुदाई में मिलता है वो रजिस्टर में लिखा जाएगा और दोनों पार्टी के लोग उसको साइन करेंगे। तो कोर्ट ने इतने, इससे ज्यादा निष्पक्ष क्या हो सकती है कोर्ट? तो जो खुदाई हुई वो हैरानगी की इस बात, ये बात थी कि उसने साबित किया कि उस स्थान पर कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन फ्रॉम सेकेंड मिलेनियम बीसी, सेकेंड मिलेनियम बीसी से वहां पर एक के बाद एक कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन था, वो स्थान कभी खाली नहीं था, और वहां पर कोई महल राजा का या कोई लोगों के घर नहीं थे, एक के बाद एक रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वहां पे बने थे। और वो पूरी विवरण करती है। हमारे लिए ये जरूरी है, इंटरेस्टिंग है कि एएसआई रिपोर्ट के हिसाब से या अनुसार 10वीं शताब्दी में एक मंदिर बना, और एएसआई रिपोर्ट ये नहीं कहती, वो सिर्फ कहती है कि मंदिर शॉर्ट लिव्ड था, उसका बहुत कम समय तक वो रहा, और उस शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर के ऊपर 12वीं शताब्दी में ये विशाल मंदिर बना जिसको बाबर ने डिस्ट्रॉय किया। अब ये 10वीं शताब्दी का जो मंदिर था, जो एएसआई रिपोर्ट कहती है इसका काल बहुत कम था, इसका क्या क्या हुआ इस मंदिर का? जैसे हम जानते हैं कि हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार एक स्थान जो मंदिर का हो गया है वो मंदिर कभी नहीं खो सकता, चाहे विदेशी उसको ऑक्यूपाई करें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, कोई बाहर का आके या कोई और आके उस स्थान पर कब्जा कर ले तब भी वो स्थान मंदिर का ही स्थान है। तो अब ये हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 10th-11th सेंचुरी का जो मंदिर था उसका क्या हशर हुआ, क्योंकि हमको पता है कि महमूद गजनवी के पुत्र का पहला आक्रमण यहाँ पर हुआ। तो हो सकता है कि वो 10वीं-11वीं शताब्दी का मंदिर पहले वेव ऑफ तुर्की आक्रमण ने आक्रमणों में टूटा गया, और 12वीं शताब्दी में वो विशाल मंदिर बना, और उस मंदिर का इतिहास शिलालेख जो मंदिर की दीवारों से, मस्जिद की दीवारों से गिरा 1992, उसमें पूरा विवरण है। और वो जो शिलालेख है उसमें बताते हैं कि गहडवाल राजा गोविंद चंद्र उनके समय ये मंदिर बना, किसने बनाया, उनके एक फ्यूडेटरी थे, उनका नाम, उनका परिवार। लास्ट सेंटेंस बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि वेस्टर्नर्स का डर, वेस्टर्नर्स का भय को हमने खत्म किया है। वेस्टर्नर्स का भय कौन है? इसका मतलब है वो रेफर कर रहे हैं पहले तुर्की आक्रमणों को। सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।
और आखिरी में ये जो आपने बात की कि जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने गद्दारी की ना केवल देश के खिलाफ बल्कि सभ्यता, अपनी सभ्यता के खिलाफ, उनका ये जितने भी अटेम्प्ट थे, चाहे आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो और प्रूफ हो, इतने झूठ मतलब उसके अराउंड बनाया, कभी बोला कि जैन मंदिर था उसको तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया, कभी बोला बुद्धिस्ट मंदिर था, जब त्रेता का ठाकुर का जो इंस्क्रिप्शन था वो मिला तो बोला कि नहीं लखनऊ उसके म्यूजियम से चुरा के यहाँ पे रख दिया। तो मतलब इतने सारे झूठ फरेब इन्होंने बनाए। आप उस समय यू आर वेरी मच एक्टिव, यू आर अ हिस्टोरियन हु वॉज एंगेज इन राइटिंग, आपके मन में क्या बीत रहा था? मतलब आपके आपके जनरेशन के लोग हैं ये, तो आप क्या सोच रहे थे कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं? और बात ऐसे करते थे कि जैसे यही अथॉरिटी है, हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन,
और उनको जो मीडिया में इतनी स्पेस दी जाती थी, जो अध्ययन कर रहा था उसको पता था ये सारा झूठ है, लेकिन हमारे पास कोई एवेन्यू नहीं था, हम अपनी बात कहाँ लिखें, अखबारों में कोई हमको स्पेस नहीं थी, किताब छापने में भी कितनी, छपने में भी कितनी दिक्कत थी, तो वो तो छोड़िए, लेकिन मेरे को ये प्रश्न उठता है कि अब जब उनका टोटल एक्सपोजर हो गया, जब उनकी जो करतूतें हैं सामने आ गई, तो कोई भला मानस वो प्रायश्चित कि भावना तो प्रकट करेगा कि भाई हमने गलत इतिहास का प्रचार किया, हम इतिहास को गलत तरीके से समझे, तथ्यों को हमने ठीक तरह से नहीं समझा, हमारी वजह से इस देश में इतनी देर तक इतनी टेंशन्स, वाद विवाद हुए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारा सबूत एक तरफ था। देखिए मस्जिद पार्टी के पास सबूत क्या था, 300 साल आप थे नहीं, और उसके बाद 1934 से आप खुद कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, जब रामलला प्रकट होते हैं 1949 में, तब आप FIR भी नहीं फाइल करते, तो किस कौन सी बेसिस पे आप उनको सपोर्ट कर रहे थे? देखिए इतिहासकार का कर्तव्य होता है कि वो तथ्यों को सामने लाए। अब ये नहीं है कि भाई आप
जो तथ्य आ रहे हैं उनको झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिल्कुल। सो बट इट इज सैड, लेकिन इसका एक फायदा है। फायदा ये है कि मथुरा और काशी में मेरे को इन दिग्गजों की आवाज नहीं सुनाई दे रही। यू नो
दे नॉट, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई,
खत्म हो गई। अब कुछ नहीं, अब मैंने इन बड़े बड़े दिग्गजों को उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं,
क्योंकि सारे झूठ उन्होंने वहीं खर्च कर दिए,
सारे झूठ नहीं पे। और एक्चुअली इनको ये सोच भी नहीं सकते थे इनकी हार होगी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये फाइनल हियरिंग हो रही थी तो इनके वकील इतने गुस्से में थे, इन्होंने हिंदू पार्टी के पेपर्स जो वो कोर्ट में पेश कर रहे थे कोर्ट के सामने उसको फाड़ना शुरू किया, क्योंकि इनको पता चल गया कि भाई हार होने वाली है और हार के लिए ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मतलब इन द सेंस इट इज द ट्रायंफ ऑफ पीपल, ये सारी जीत आम लोगों की है।
अब ये एक जो बोला जाता है कि बहुत बड़ी जीत थी अयोध्या की, और उसमें अगर हम काशी और मथुरा को लें तो कंपैरेटिवली काशी और मथुरा तो आसान है वापस,
मथुरा तो बिल्कुल फूल प्रूफ है, क्योंकि अपनी पुस्तक में मैंने जो मैंने पुस्तक लिखी है तो मैंने दिखाया कि पहला शिला लेख जो मथुरा से मिला वो 2500 साल पहले का है। और जब हम मथुरा की बात करते हैं, काशी की भी बात करते हैं, तो हमको ये याद रखना है कि वहाँ पर कितनी बार अटैक हुए, महमूद गजनबी से लेके अहमद शाह अब्दाली, हर सुल्तान ने आक्रमण किए मथुरा पे। तो जो सबूत बचा है वो तो बाय चांस बचा है ना, और कोई सबूत पूरा बचा नहीं, और अधिकांश सबूत तो खो गए, नष्ट हो गए, लेकिन जो सबूत बचे हैं उनके आधार पर भी हम मथुरा पर प्रहार का इतिहास लिख सकते हैं, और मथुरा पर वासुदेव कृष्ण का प्रेजेंस हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, शिलालेख जो पहला शिलालेख 2500 साल पहले का है, तो और क्या चाहिए आपको? अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मथुरा में इतना शिलालेख, इतने शिलालेख हैं,
और इतिहास के हिसाब से भी बहुत हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन है।
बिल्कुल,
क्योंकि दिल्ली के पास था, सबसे ज्यादा आक्रमण हुए, लोगों ने उसके बारे में लिखा भी और बार बार वहां पे,
वहां पे भी मथुरा में भी ब्रिटिश कोर्ट्स जो हैं, उन्होंने जो इनमें फैसले किए वो सारी जजमेंट्स बची हुई हैं एंड दे आर फैबुलस। और ब्रिटिश जजेस ने ईदगाह पार्टी को कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स को ना फर्ज मत करना शुरू कीजिए, फॉर्जरी मत कीजिए। उन्होंने कटरा केशव देव जहाँ पे नाम था वहाँ पे उसको काट के कटरा ईदगाह। तो कोर्ट ने कहा आप क्या कर रहे हैं। अयोध्या में भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया, और क्या किया, जहाँ पे मस्जिद लिखा था ना, नहीं सॉरी, वहां पे जन्म स्थान लिखा था अयोध्या पे, वहां पे उन्होंने पेन से ऊपर लिख दिया और बाबरी मस्जिद। तो वो सब, वो जो उन्होंने फॉर्जरी की वो इंडिपेंडेंस के बाद की है, 1990s की है। और वो पकड़े गए क्योंकि पहले की इंक और 1990s की इंक में तो कितना फर्क होगा। हैंडराइटिंग अलग थी, निब अलग थी, पेन तो पकड़े गए। और उनको ये नहीं ख्याल आए कि ये डॉक्यूमेंट्स के दो सेट हैं, तो एक सेट जो उनके हाथ लगा उसमें तो उन्होंने कर दिया फॉर्जरी, और दूसरा सेट ऑफ वही डॉक्यूमेंट्स,
इसके लिए इनको सजा क्यों नहीं हो रही?
क्यों नहीं? मेरे को, मेरे मन में यही प्रश्न आता है कि इतना आपने इस देश के साथ अन्याय किया है तो कोई सजा नहीं, माफी नहीं, सजा नहीं। तो यही कहानी मथुरा में, मथुरा में भी एटलीस्ट 8-10 केसेस इन द कोर्ट आई एम अवेयर ऑफ, जो मंदिर और मस्जिद पार्टी के बीच में है, और हर केस में मस्जिद पार्टी हारी है। और ब्रिटिश जज ने कहा है बार बार आप वही केस लेके आ रहे हैं, जब आपके पास कोई सबूत नहीं है तो बार बार वो केस क्यों लेके आ रहे। सो द केस इन मथुरा इज वेरी स्ट्रांग। प्रॉब्लम सिर्फ मथुरा में ये है जो मैं समझ रही हूं, क्योंकि लास्ट आई विटनेस अकाउंट मथुरा उस इलाके की अलेक्जेंडर कनिंगहैम की है। अलेक्जेंडर कनिंगहैम डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 5-6 बार मथुरा का दौरा किया और हर बार रिपोर्ट पेश की, और जो लास्ट रिपोर्ट उनके वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा मैंने इस मंदिर की नींव देखी है, फाउंडेशन, और मैं कह सकता हूं कि ये पूरे भारत में वन ऑफ द बिगेस्ट टेंपल्स हुआ करता था।
अच्छा।
हाँ, और वो कहते हैं कि ईदगाह जो है वो खंडर हो गया है, इसकी दीवारों में, छतों में इतने दरार पड़ गए हैं, इसको तो डिमोलिश करके यहाँ पर एक्सकवेशंस हो सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मस्जिद बनी हुई है, अब ये तो दरार नहीं है इसमें, ये तो नई मस्जिद है। तो लोगों का कहना है कि 1968 में केंद्रीय सरकार ने समझौता किया ईदगाह पार्टी और उनको कटरा केशव देव के 2 एकड़ जमीन दे दी, जबकि
केंद्र सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने?
अब मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार बिना केंद्र सरकार की सहमति से ये कर सकती है। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार है तो केंद्रीय सरकार सो रही थी क्या?
बट जो ऑफिशियली दिया हैंडओवर हुआ है वो उत्तर प्रदेश सरकार का नाम है कि इन्होंने किया लीगली,
डॉक्यूमेंट है जिसमें जिस पूरा वो स्पष्ट किया गया ये इतनी जमीन है, उस जमीन का इतने फीट यहाँ से, उतने फीट यहाँ से, उतने फीट वहां से। वो समझौता है श्री कृष्ण जन श्री कृष्ण सेवा संघ और ईदगाह पार्टी।
और ये सेवा संघ कुछ,
अब ये सेवा संघ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कब आई, कहाँ से आई और इसको किसने शक्ति दी, पावर दी कि भाई तुम समझौता कर लो। क्योंकि कटरा केशव देव तो हिंदू पार्टी कभी नहीं आ रही थी।
बट ठीक है, सरकार ने दिया है तो सरकार ले भी सकती है।
नहीं नहीं, वो तो ले भी सकती है, लेकिन हमको ये सोचना चाहिए कि जो हिंदूज इतनी सदियों से इतने मुश्किल हालातों में संघर्ष कर रहे थे, तो
उस समाज के साथ गद्दारी किसने की है।
वही।
चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतना विस्तार में बताने के लिए। और एक जो अयोध्या को जो न्याय मिला है, उसके जो हिंदू समाज को न्याय मिला है, वो काशी और मथुरा दोनों में और मिले, और भी बहुत सारे उसके बाद मंदिर बचेंगे। जैसे एक मंदिर में मैं गया था विदिशा में,
हाँ।
विजय मंदिर, जो अगर आप उसके
मैंने उसके ऊपर लिखा है,
बहुत ब्रिलियंट मतलब मंदिर रहा होगा वो उस समय का, अगर आप आज भी देखें तो उसके जो नकाशी है और वो सब, तो उस तरीके के बहुत सारे मंदिर हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक हम मंदिरों के ऊपर एक वार्तालाप करें बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच आपने आने के लिए और इतना समय देने के लिए।
अंत करेंगे जय श्री राम के।
जय श्री राम।
अगली बार जय श्री कृष्णा हो सकता है। हर हर महादेव हो सकता।
बिल्कुल। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।